एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो पुणे के स्टूडियो से
आपका हार्दिक स्वागत है।
यह हमारी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सेवा है।
हमारे आज के कार्यक्रम में हम आपके लिए एक प्रेरणादायक संदेश और प्रशंसा के गीत ले आए हैं।
आपको आध्यात्मिक रूप से मजबूत करने के लिए आप परमेश्वर का वचन सुनेंगे।
आप एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो सुन रहे हैं आशा की वाणी।
अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क कर सकते हैं 1-800-833-2231 पर संपर्क करें या bible@awr.org पर ईमेल करें।
इस डाक पते पर हमें लिखने के लिए आपका स्वागत है। एडवेंटिस्ट मीडिया सेंटर, पोस्ट बॉक्स 1446, मार्केट यार्ड पुणे 411037, महाराष्ट्र, भारत।
आप हमें इस पर ईमेल कर सकते हैं hindirsamc@sudavent.org। एक बार फिर ईमेल आईडी hindirsamc@sudavent.org पर।
आप इस नंबर पर आपकी बाइबल अध्ययन में रुचि और प्रार्थना अनुरोध के साथ हमसे संपर्क कर सकते हैं। 9195-7285-9272।
आप हमारे सभी कार्यक्रमों को सुनने के लिए हमारी वेबसाइट awr.org पर भी लॉगिन कर सकते हैं। मैं दोहराता हूँ awr.org या awr360 मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं।
एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो AWR पुणे स्टूडियो से।
हमारे साथ हैं श्रीमान रॉबिन्सन आर कुजूर परमेश्वर का वचन प्रस्तुत करने के लिए।
परमेश्वर का वचन सुनने से पहले आपके लिए एक मधुर गीत।
फिर ना कहना हम थे पापी हम नादान, संसार से मन फिरा ले, यीशु को हृदय में बसा ले, संसार से मन फिरा ले, यीशु को हृदय में बसा ले। आने वाला है मसीह अपने लोगों के लिए, आने वाला है मसीह अपने लोगों
समय है परमेश्वर का वचन सुनने का।
नमस्कार प्रिय श्रोताओं, मैं भाई रॉबिन्सन कुजूर परमेश्वर का सेवक परमेश्वर का वचन लेकर आपके पास आता हूँ। आइए हम उसका वचन सुनने से पहले परमेश्वर पिता से प्रार्थना करें। ये हमारे महान दयालु सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम तेरे पास फिर आते हैं तो हमारे मनों को खोल दे जब हम तेरे वचनों को सुनते हैं, और तेरे आत्मा के द्वारा चला कि हम तेरे रास्ता में जा सके। विशेषकर मेरे संग पिता तेरा पवित्र आत्मा दे ताकि मैं तेरे वचनों को तेरे सामर्थ के द्वारा बतला सकूं, और मेरे हरेक श्रोताओं के संग पिता वे तेरे वचन को सुन करके आत्मिक लाभ उठा सके और तेरे नजदीक आ सके। हम सबों को तेरे स्वर्गीय राज के लिए तैयार कर, प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, सुन ग्रहण कर, आमीन। प्यारो, आज का मेरा संवाद का शीर्षक है चांदी का खोया हुआ टुकड़ा। खोई हुई भेड़ का दृष्टांत देने के बाद मसीह ने एक और बात कही, कौन ऐसी स्त्री होगी जिसके पास 10 चांदी के सिक्के हों और उनमें से एक हो जाए तो वह दिया जलाकर घर ना झाड़ दे और जब तक मिल ना जाए तब तक यत्न से ना ढूंढे। पूर्व में गरीबों के घरों में आमतौर पर सिर्फ एक कमरा होता था जिसमें अक्सर खिड़कियां नहीं होती थी और अंधेरा रहता था। कमरे में शायद ही कभी झाड़ू लगाई जाती थी, और अगर कोई सिक्का जमीन पर गिर जाता तो वह तुरंत धूल और कचरे से ढक जाता था। इसे पाने के लिए दिन में भी मोमबत्ती जलानी पड़ती थी और घर को पूरी लगन से झाड़ना पड़ता था। पत्नी के विवाह भाग में आमतौर पर पैसे के सिक्के होते थे जिन्हें वह अपनी सबसे प्रिय संपत्ति के रूप में सावधानी से संभाल कर रखती थी, जिसे वह अपनी बेटियों को देती थी। इनमें से एक भी सिक्का खो जाने को एक गंभीर आपदा माना जाता था और इसके वापस मिलने पर बहुत खुशी होती थी, जिसमें पड़ोसी महिलाएं भी खुशी खुशी हिस्सा लेती थी। मसीह ने कहा जब वह उसे पा लेती है तो वह अपने मित्रों और पड़ोसियों को इकट्ठा करके कहती है, मेरे साथ आनंद मनाओ क्योंकि मुझे वह सिक्का मिल गया है जो मैंने खो दिया था। इसी तरह मैं तुमसे कहता हूँ, एक पश्चाताप करने वाले पापी के विषय में परमेश्वर के स्वर्गदूतों के सामने स्वर्ग में बड़ा आनंद होता है। यह दृष्टांत पिछले दृष्टांत की तरह किसी ऐसी चीज के खोने की बात करता है जिसे उचित खोज से वापस पाया जा सकता है, और वह भी बहुत खुशी के साथ। लेकिन दोनों दृष्टांत अलग अलग वर्गों का प्रतिनिधित्व करते हैं। खोई हुई भेड़ जानती है कि वह खो गई है, वह चरवाहे और झुंड को छोड़ चुकी है और वह खुद को वापस नहीं पा सकती। यह उन लोगों का प्रतिनिधित्व करता है जो महसूस करते हैं कि वे ईश्वर से अलग हो गए हैं और जो उलझन, अपमान और बुरी तरह से परीक्षा में है। खोया हुआ सिक्का उन लोगों का प्रतिनिधित्व करता है जो अपराधों और पापों में खोए हुए हैं, लेकिन जिन्हें अपनी स्थिति का कोई बोध नहीं है। वे ईश्वर से अलग हो गए हैं, लेकिन उन्हें इसका पता नहीं है। उनकी आत्माएं खतरे में हैं, लेकिन वे बेहोश हैं और बेपरवाह। इस दृष्टांत में मसीह सिखाते हैं कि जो लोग परमेश्वर के दावों के प्रति उदासीन हैं, वे भी उसके दयालु प्रेम के पात्र हैं। उन्हें खोजा जाना चाहिए ताकि उन्हें परमेश्वर के पास वापस लाया जा सके। भेड़े बाड़े से भटक गई, वह जंगल में या पहाड़ों पर खो गई। चांदी का टुकड़ा घर में खो गया, वह पास ही था, फिर भी उसे केवल परिश्रम पूर्वक खोज करके ही वापस पाया जा सकता था। इस दृष्टांत में परिवारों के लिए एक सबक है। घर में अक्सर अपने सदस्यों की आत्माओं के बारे में बहुत लापरवाही बरती जाती है। उनमें से एक ऐसा भी हो सकता है जो परमेश्वर से अलग हो, लेकिन इस बात की कितनी कम चिंता होती है कि कहीं पारिवारिक रिश्ते में परमेश्वर द्वारा सौंपे गए उपहारों में से एक खो ना जाए। सिक्का भले ही धूल और कचरे के बीच पड़ा हो, फिर भी चांदी का एक टुकड़ा है। इसका मालिक इसे ढूंढता है क्योंकि यह मूल्यवान है। इसलिए हर आत्मा, हर प्राणी, हर व्यक्ति चाहे पाप के कारण कितने भी अपमानित क्यों ना हो, परमेश्वर की दृष्टि में मूल्यवान मानी जाती है। जैसे सिक्के पर राज करने वाली शक्ति की छवि और ऊपरी लेख अंकित होता है, वैसे ही मनुष्य ने अपनी रचना के समय परमेश्वर की छवि और ऊपरी लेख धारण किया, और हालांकि अपाप के प्रभाव से यह खराब और धुंधला हो गया है, फिर भी इस शिलालेख के निशान हर आत्मा पर बने हुए हैं। परमेश्वर उस आत्मा को पुनः प्राप्त करना चाहता है और उस पर धार्मिकता और पवित्रता में अपनी स्वयं की छवि को फिर से अंकित करना चाहता है। दृष्टांत में महिला अपने खोए हुए सिक्के को खोजने में लगन से लगी है। वह मोमबत्ती जलाती है और घर की सफाई करती है। वह हर उस चीज को हटा देती है जो उसकी खोज में बाधा बन सकती है। हालांकि केवल एक सिक्का खो गया है, वह तब तक अपने प्रयासों को नहीं रोकती जब तक कि वह सिक्का नहीं मिल जाता। इसलिए परिवार में अगर कोई सदस्य ईश्वर के पास से खो जाता है तो उसे वापस पाने के लिए हर संभव उपाय करना चाहिए। बाकी सभी को लगन से, सावधानी से आत्म परीक्षण करना चाहिए, जीवन अभ्यास की जांच करनी चाहिए, देखें कि कहीं कोई गलती तो नहीं है, प्रबंधन में कोई त्रुटि तो नहीं है जिससे उस आत्मा को पश्चातहीनता की पुष्टि हो जाती है। अगर परिवार में कोई बच्चा है जो अपनी पापी अवस्था से अनजान है तो माता पिता को चैन से नहीं बैठना चाहिए, मोमबत्ती जलाइए, परमेश्वर के वचन की खोज करें और उसकी रोशनी से घर की हर चीज की बारीकी से जांच करें ताकि पता चले कि यह बच्चा क्यों खो गया है। माता पिता को अपने दिल की जांच करनी चाहिए, अपनी आदतों और व्यवहारों की जांच करनी चाहिए। बच्चे प्रभु की विरासत हैं और हम उनकी संपत्ति के प्रबंधन के लिए उनके प्रति जवाबदेह हैं। ऐसे पिता और माताएं हैं जो किसी विदेशी मिशन क्षेत्र में काम करना चाहते हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं जो घर के बाहर ईसाई कार्य में सक्रिय हैं, जबकि उनके अपने बच्चे उद्धारकर्ता और उनके प्रेम से अनजान हैं। बहुत से माता पिता अपने बच्चों को मसीह के लिए जीतने का काम पादरी या सबक स्कूल शिक्षक को सौंप देते हैं, लेकिन ऐसा करने में वे अपनी खुद की ईश्वर प्रदत्त जिम्मेदारी की उपेक्षा कर रहे हैं। अपने बच्चों को मसीह बनाने के लिए शिक्षा और परीक्षण देना सबसे बड़ी सेवा है जो माता पिता ईश्वर को दे सकते हैं। यह एक ऐसा काम है जो धैर्यपूर्ण परिश्रम, आजीवन मेहनती और दृढ़ प्रयास की मांग करता है। इस भरोसे की उपेक्षा करके हम खुद को विश्वासघाती प्रबंधक साबित करते हैं। ऐसी उपेक्षा के लिए कोई बहाना ईश्वर द्वारा स्वीकार नहीं किया जाएगा। लेकिन जो लोग उपेक्षा के दोषी हैं, उन्हें निराश नहीं होना चाहिए। जिस महिला का सिक्का खो गया था, उसने तब तक खोज की जब तक उसे मिल नहीं गया। इसलिए प्रेम, विश्वास और प्रार्थना में माता पिता को अपने घर के लिए काम करना चाहिए, जब तक कि वे खुशी से ईश्वर के पास ना आ जाएं। कह रहे हैं, देखो मैं और वे लड़के जिन्हें प्रभु ने मुझे दिया है, जब प्रभु यीशु मसीह दूसरी बार आएंगे तो यह हरेक माता पिता हम कहने पाए, जो कि यशया 8:18 में लिखा है। यह कहें कि देखो या देखिए, मैं और वे लड़के जिन्हें प्रभु ने मुझे दिए हैं, ये सब आपके सामने हैं। यह सच्चा गृह मिशनरी कार्य है और यह उन लोगों के लिए उतना ही सहायक है जो इसे करते हैं, जितना कि उन लोगों के लिए जिनके लिए यह किया जाता है। ग्रह मंडल के प्रति हमारी वफादार रुचि से हम प्रभु के परिवार के सदस्यों के लिए काम करने के लिए खुद को तैयार कर रहे हैं, जिनके साथ यदि हम मसीह के प्रति वफादार हैं तो हम अनंत युगों तक जीवित रहेंगे। मसीह में हमारे भाइयों और बहनों के लिए हमें वही रुचि दिखानी है जो एक परिवार के सदस्यों के रूप में हम एक दूसरे के लिए रखते हैं। और परमेश्वर चाहता है कि यह सब हमें दूसरों के लिए काम करने के योग्य बनाए। जैसे जैसे हमारी सहानुभूति बढ़ेगी और हमारा प्रेम बढ़ेगा, हमें हर जगह काम करने के लिए कुछ ना कुछ मिलेगा। परमेश्वर का महान मानव परिवार पूरी दुनिया को अपने में समाहित करता है और इसके किसी भी सदस्य को अनदेखा नहीं किया जाना चाहिए। हम चाहे जहां भी हों, वहां खोया हुआ चांदी का टुकड़ा हमारी खोज का इंतजार कर रहा है। क्या हम उसे ढूंढ रहे हैं? हम दिन प्रतिदिन ऐसे लोगों से मिलते हैं जो धार्मिक चीजों में कोई दिलचस्पी नहीं रखते। हम उनसे बात करते हैं, हम उनके बीच जाते हैं। क्या हम उनके आध्यात्मिक कल्याण में रुचि दिखाते हैं? क्या हम मसीह को उनके सामने पाप क्षमा करने वाले उद्धारकर्ता के रूप में पेश करते हैं? मसीह के प्रेम से गर्म अपने दिलों के साथ क्या हम उन्हें उस प्रेम के बारे में बताते हैं? अगर हम ऐसा नहीं करते तो हम इन आत्माओं से कैसे मिलेंगे? खोई हुई, हमेशा के लिए खोई हुई, जब हम उनके साथ परमेश्वर के सिंहासन के सामने खड़े होते हैं। आत्मा का मूल्य कौन आंक सकता है? क्या आप इसका मूल्य जान सकते हैं? गेत्सेमनी बगीचा जाइए और वहां मसीह के साथ उन पीड़ा के घंटों में देखिए, जब वह खून की बड़ी बड़ी बूंदों की तरह पसीना बहा रहा था। क्रूस पर चढ़े उद्धारकर्ता को देखिए, उस निराशाजनक पुकार को सुनिए, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों त्याग दिया? मरकुस 15:34 में हम यह पढ़ते हैं। घायल सिर, छिदे हुए बाजू, घायल पैरों को देखिए। याद रखें कि मसीह ने सब कुछ जोखिम में डाला, हर एक कोई को बचाने के लिए। हमारे उद्धार के लिए स्वर्ग भी खतरे में पड़ गया। क्रूस के नीचे यह याद करते हुए कि एक पापी के लिए मसीह ने अपना जीवन दे दिया, आप एक आत्मा के मूल्य का अनुमान लगा सकते हैं। परमेश्वर के नजर में, यीशु मसीह के नजर में दुनिया के हर एक व्यक्ति, हर एक प्राणी मूल्यवान है। हर एक व्यक्ति को वह अपने लहू से बचाना चाहता है। यदि आप मसीह के साथ संगति में हैं, तो आप हर मनुष्य पर उसका मूल्यांकन करेंगे। आप दूसरों के लिए वैसा ही गहरा प्रेम महसूस करेंगे जैसा मसीह ने आपके लिए महसूस किया है। तब आप उन लोगों को जीतने में सक्षम होंगे, ना कि उन्हें भगाने में, आकर्षित करने में, ना कि उन्हें दूर भगाने में, जिनके लिए मसीह ने अपनी जान दी है। यदि मसीह ने उनके लिए व्यक्तिगत प्रयास ना किया होता, तो कोई भी कभी भी परमेश्वर के पास वापस नहीं लाया जा सकता था। और यह व्यक्तिगत कार्य ही है जिससे हम आत्माओं को, लोगों को बचा सकते हैं। जब आप उन लोगों को देखते हैं जो मृत्यु के मुंह में जा रहे हैं, तो आप शांत उदासीनता और सहजता में आराम नहीं करेंगे। जितना बड़ा उनका पाप और जितना गहरा उनका दुख, उनके ठीक होने के लिए आपके प्रयास उतने ही गंभीर और कोमल होंगे। आप उन लोगों की जरूरतों को समझेंगे जो पीड़ित हैं, जो परमेश्वर के विरुद्ध पाप कर रहे हैं और जो अपराध के बोझ से दबे हुए हैं। आपका दिल उनके लिए सहानुभूति से भर जाएगा और आप उनकी मदद के लिए हाथ बढ़ाएंगे। अपने विश्वास और प्रेम की बाहों में आप उन्हें मसीह के पास लाएंगे। आप उनकी देखभाल करेंगे और उन्हें प्रोत्साहित करेंगे और आपकी सहानुभूति और आत्मविश्वास उनके लिए उनकी दृढ़ता से गिरना कठिन बना देगा। इस कार्य में स्वर्ग के सभी स्वर्गदूत सहयोग करने के लिए तैयार हैं। स्वर्ग के सभी संसाधन उन लोगों के आदेश पर हैं जो खोए हुए लोगों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। स्वर्गदूत आपको सबसे लापरवाह और सबसे कठोर लोगों तक पहुंचने में मदद करेंगे और जब कोई व्यक्ति परमेश्वर के पास वापस लाया जाता है तो पूरा स्वर्ग खुश हो जाता है। स्वर्गदूत के एक दल जिसको सराफ कहते हैं और दूसरे दल करूब, ये सब अपनी सुनहरी वीणाओं को छूते हैं और मनुष्य के बच्चों के प्रति उनकी दया और प्रेमपूर्ण कृपा के लिए परमेश्वर और मेमने की स्तुति करते हैं, परमेश्वर की स्तुति करते हैं। आज हम इस संवाद में देखा है कि हम लोगों को जिम्मेवार मिलता है जो लोग खोए हुए हैं उनके प्रति दया और प्रेम दिखाना है, क्योंकि वे लोग, ये आत्माएं, ये प्राणी परमेश्वर के नजर में बहुत मूल्यवान है। जैसे कि एक स्त्री के लिए एक खोया हुआ सिक्का मूल्यवान रहती है। हम सबों को काम करना है, इर्द गिर्द जिनसे हम मिलते हैं अगर वे सच्चाई को नहीं जानते हैं, परमेश्वर से दूर हैं, तो उन्हें परमेश्वर के प्रेम को बतलाना है, परमेश्वर के रास्ता में अगुवाई करना है, परमेश्वर के पास लाने का काम करना है। और माता पिता को विशेष जिम्मेवारी मिलती है, अगर उनके एक भी बच्चे सही रास्ता से भटक गए उनके लिए पूरा प्रयास करना है, जैसे कि वह स्त्री प्रयास करती है जब तक कि चांदी का सिक्का नहीं मिल जाता है। हमें परमेश्वर की ओर से यह प्रेरणा मिलता है और हमें यह परमेश्वर कहता है कि उनके लिए प्रयास करो। जैसा परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया, उसने भी हमसे बहुत प्रेम किया और प्रभु यीशु मसीह हम सबों को भी बचाने के लिए अपना मूल्य लहू को बहाया। आइए हम सच्चाई में स्थिर रहें और दूसरों को भी प्रभु के रास्ता में लाने का कार्य करें। स्वर्गदूत हमें मदद करेंगे। आइए हम परमेश्वर के प्रेम को हृदय से महसूस करें और इसका गवाही दें और दूसरे लोगों को भी सही रास्ता में लाने का कार्य करें। परमेश्वर आपको और हम सबों को बहुतायत से आशीष देवे। आइए हम प्रार्थना करें। ये हमारे महान दयालु सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम फिर से तेरे चरणों के पास आते हैं पिता। हम तुझे धन्यवाद देते हैं तेरे प्रेम के लिए, तेरे अनुग्रह के लिए और इस वचन के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। तूने हम पर बहुत कृपा किया है, हमसे बहुत प्रेम किया है और हमें बचाने के लिए तू स्वर्ग खाली करके प्रभु यीशु मसीह को इस दुनिया में भेज दिया। उसने हमें मूल्य समझ करके अपना बहुमूल्य लहू बहाया कि हम पाप से छुड़ाया जा सके, पाप से बचाया जा सके और अनंत जीवन पा सके। इसी रीति से पिता, जब हम तेरे विश्वास में बन जाते हैं, जानते हैं, तो हम दूसरों को भी तेरे सही रास्ता में लाने का काम करें। इसके लिए तू हमें शक्ति दे, तेरा अगुवाई दे, तेरा आत्मा के द्वारा बल दे और हमें विश्वास है कि तू अपने स्वर्गदूतों के द्वारा हमें मदद करेगा। हम सबों को तू बहुतायत से आशीष दे। मैं हरेक श्रोताओं को आशीष दे और तेरे राज को यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सोना ग्रहण करे। आमीन।
साथ ही हम लगभग अपने प्रसारण के समाप्ति पर आ गए हैं। परमेश्वर के वचन को अधिक जानने के लिए आप हमेशा हमें 1-800-833-2231 पर संपर्क करें या हमें bible@awr.org पर ईमेल करें।
हमारा डाक पता है AWR Adventist World Radio, Post Box 1446, पुणे 411037, महाराष्ट्र, भारत।
आप हमें इस पर ईमेल भी कर सकते हैं hindirsamc@sudavenTIST.org।
मैं हूं गौरव चौहान
और मैं हूं सारा मंडोरा। AWR की ओर से विदा लेते हैं।
अपने परिवार और दोस्तों के साथ फिर से हमसे जुड़ें। तब तक हम आपको अलविदा और ईश्वर के आशीर्वाद की कामना करते हैं।